दिन भर शुक्रवार 2 दिसंबर मैं हूं संदीप सोनी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती को गृह युद्ध शुरू करने की कोशिश बताया। क्या ममता बनर्जी का आरोप सही है?
The whole thing, I believe, it's becoming a theater of absurd.
झारखंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। विवेचना में आज बात देवानंद की।
जीनत को उन्होंने किसी पार्टी में देखा और वो सिगरेट पी रही थी, और जब देव साहब ने जाके उसको हेलो कहा तो उसने उनको हेलो बोला और सिगरेट ऑफर की। देव साहब ने कहा कि जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा कि मेरी ये फिल्म है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सूबे की सरकार को बिना बताए पश्चिम बंगाल सचिवालय और कई जिलों में सेना की तैनाती की गई है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट में इसे गृह युद्ध शुरू करने की कोशिश बताया। पार्टी ने कहा है कि सूबे में सेना की तैनाती 19 जगहों पर की गई है। वहीं सूबे में सेना की तैनाती को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भारतीय संघीय ढांचे पर हमला बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बोको हराम के विद्रोह की वजह से उत्तरी नाइजीरिया के 1,00,000 से ज्यादा लोग भुखमरी से मरने की कगार पर हैं। सहायता एजेंसियों का कहना है कि यह संकट बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि नाइजीरिया की सेना ने चरमपंथियों के कब्जे वाले बड़े इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन असुरक्षा के हालात जारी रहने का मतलब है कि किसान फसलें नहीं उगा पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग 7,00,000 लोगों को मानवीय सहायता की तत्काल जरूरत है। सेव द चिल्ड्रन के कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के मैनेजर डेंस टेवर्ट का कहना है कि विद्रोह के चलते ज्यादातर बच्चे अनाथ हो गए हैं, इसलिए उनकी स्थिति बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा,
One of the reasons this crisis is hitting children so hard is that a lot of children have been cut off from their parents or seen their parents.
इस संकट से बच्चों को सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इसकी एक वजह यह है कि ज्यादातर बच्चे अपने परिवार से अलग हैं। कई बच्चों ने हिंसा के दौरान अपने माता पिता की हत्या होते देखा है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 20,000 बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए हैं, और इनमें से कई बच्चों ने अपने माता पिता की हत्या होते अपने सामने देखा है। मैंने ऐसे बच्चों से बात की है जिन्होंने ये सब कुछ देखा और बचने के लिए भाग गए। उनके पास भूख और पानी की समस्या से सामना करने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। डेंस टेवर्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के कोहिस्तान से गायब हुई लड़कियों को दूर दराज इलाकों में ढूंढने के लिए भेजे गए न्यायाधीश का कहना है कि वो उनके जिंदा होने के सबूत ढूंढने में नाकामयाब रहे। कोहिस्तान के क्षेत्र की लड़कियां तब सुर्खियों में आई थी जब 6 साल पहले इनका किसी शादी के दौरान एक कोने में बैठकर ताली बजाते हुए गाना गाने का वीडियो ऑनलाइन के जरिए फैला था। ये मामला कोर्ट में पहुंचा जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव के बड़ों ने समाज को शर्मिंदा करने के इल्जाम के तहत इन लड़कियों का कत्ल कर दिया। जज और उनकी टीम का कहना है कि गांव वालों ने जिन लड़कियों को उनके सामने पेश किया था ये वो नहीं है जो वीडियो में नजर आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि एलेप्पो से खबरें आ रही हैं कि विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो से भागकर आने वाले लड़कों और पुरुषों को सरकारी सेना ने हिरासत में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र सहायता संस्था का कहना है कि कुछ विद्रोही लड़ाके उन नागरिकों की हत्या कर रहे हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। संस्थाओं का अनुमान है कि पिछले हफ्ते सरकारी सेना के एलेप्पो के बड़े हिस्से के से करीब 31,000 से ज्यादा लोग पूर्वी एलेप्पो से भाग गए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य की सरकार को बिना बताए पश्चिम बंगाल सचिवालय और कई जिलों में सेना को तैनात किया गया। तृणमूल के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने इसे गृह युद्ध शुरू करने की कोशिश तक बता दिया है। सवाल यह है कि किन हालात में सेना को राज्यों में तैनात किया जाता है और इस मामले में क्या नियमों का पालन हुआ है। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि पुलिस के एतराज के बावजूद सेना टोल प्लाजा पर क्या कर रही थी, राज्य सचिवालय के सामने क्यों खड़ी थी, और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, बरकपुर नॉर्थ, 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और मुर्शिदाबाद और वर्धमान में भी सेना को क्यों तैनात किया गया था। लेकिन पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने आरोपों को बेहुदा बताते हुए कहा है कि अगर तख्ता पलट करना होगा तो कोई पश्चिम बंगाल में क्यों करेगा। दरअसल पूरे मामले में क्या हुआ इसे लेकर कई सवाल हैं। सेना के पूर्वी कमांड ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल पुलिस की पूरी जानकारी और उनके तालमेल के साथ रूटीन अभ्यास कर रही थी और ये कहना कि उसने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया गलत है। पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम के मुताबिक सेना को उस वक्त स्थानीय प्रशासन को जानकारी देनी होती है जब राज्य के अनुरोध पर सेना को कानून व्यवस्था, बाढ़, दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बुलाया जाता है या केंद्र सरकार के कहने पर सेना को तैनात किया जाता है, तब राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। टीएसआर सुब्रमण्यम कह रहे थे, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव था तो किसी ने मुझे नहीं बताया जब सेना एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। सैन्य गतिविधि की जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है। जहां सेना राज्य पुलिस के साथ कोई अभ्यास करती है तब राज्य को जानकारी दी जाती है, नहीं तो ये रूटीन का मामला होता है। 42 साल तक सेना में रहे और 3 वर्षों तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल वीपी मलिक के मुताबिक सैन्य अभ्यास की जानकारी प्रशासन को दी जाती है और ये इजाजत नहीं विचार विमर्श के आधार पर होता है।
अगर आपको कोई इतराज कहीं पर भी है, shouldn't the chief secretary or home secretary pick up a telephone and ask the army headquarters, army authorities कि भाई ये क्या हो रहा है? The whole thing, I believe it's becoming a theater of absurd. अगर उसमें कोई चीज आपको किसी को समझ नहीं आई या किसी ने रेस किया तो आप टेलीफोन उठाइए और बात करिए, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना हुआ है आपके लिए।
उन्होंने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों को समझने के लिए लगातार प्रदेश सरकार और स्थानीय मिलिट्री हेडक्वार्टर संपर्क में रहते हैं और मामले पर सालाना कॉन्फ्रेंस भी होती है।
आई फील दैट द पुलिस शुड हैव बीन आल्सो कॉल्ड, दे शुड हैव बीन कॉल्ड, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर।
जनरल मलिक कह रहे थे उन्हें लगता है कि टोल प्लाजा पर पुलिस को भी बुलाना चाहिए था, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसे इस स्तर तक ले जाना बेहुदा है। उधर टीएसआर सुब्रमण्यम कहते हैं टोल प्लाजा पर सेना क्या कर रही थी ये उन्हें नहीं पता, लेकिन ये एक स्वतंत्र देश है, सेना की ड्रिल्स देश भर में होती हैं और ममता बनर्जी का वक्तव्य आश्चर्य में डालने वाला है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
भारतीय सेना का दावा है कि पश्चिम बंगाल में टोल प्लाजा पर सेना ने जिस तरह का अभ्यास किया वो कोई नई बात नहीं है और ऐसा पहले भी होता आया है। क्या वाकई ऐसी बात है और इससे पहले कब सेना ने इस तरह का अभ्यास किया था, जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला से बात की।
राष्ट्रीय स्तर पर एक मोबिलाइजेशन स्कीम बनाई जाती है जिसके वजह से फौज किसी इमरजेंसी में प्राइवेट व्हीकल्स को रोक के उनको, जिसे बोलते हैं, रिक्विजिशन कर सकता है फौजी यूज के लिए, फौज को जल्दी से बॉर्डर पर ले जाने के लिए या उनके स्टोर्स को उठाने के लिए। हर यूनिट हर 3 महीने के अंदर एक बारी अपना मोबिलाइजेशन स्कीम प्रैक्टिस करती है। लेकिन जब ये फौज ऐसे कामों का रिहर्सल करती है जो कि ये इन्वॉल्व करती है सिविल गाड़ियों को रोकने की, तो वो आमतौर पर आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के साथ मिलाप करते हुए दोनों एक साथ जो है ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या कैपेसिटी है, कितनी गाड़ियां हम रोक पाएंगे, और ये इस काम का भी रिहर्सल करती हैं कि गाड़ियों का लोड उतार के जो है साइड पे धरना, उसको सेफ गार्ड करना, ये सब चीजें जो है मोबिलाइजेशन स्कीम के अंदर आती है और ये फौज बाकायदा प्रैक्टिस करती है लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलाप रखते हुए। जब कोई इमरजेंसी आती है तो उस फौज को अपने कैंटोनमेंट से उठाकर बड़ी तेज गति के साथ बॉर्डर पे ले जाना सबका इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय इंटरेस्ट भी है। उस हालत में रेलगाड़ियों को रिक्विजिशन करना, सिविल गाड़ियों को रिक्विजिशन करना, ये राष्ट्रीय हित में है।
आपको याद आता है आखिरी बार भारतीय फौज ने कब इस तरह इस्तेमाल किया रिक्विजिशन जो आप बता रहे हैं और अपने असला सामान को लाने ले जाने के लिए, कोई बड़ी घटना आपको याद आती है?
जी हाँ, ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ, जब पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 में, उसके ठीक बाद कई हफ्तों के लिए पूरे देश भर की रेलगाड़ियां, सिविल व्हीकल्स वगैरह वो रिक्विजिशन किए जा रहे थे। फौज ने बाकायदा अपना मोबिलाइजेशन किया, पूरे तरीके से जो है इन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए वो बॉर्डर पे गई और उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि लड़ाई का अंदेशा सबके दिमाग में बिल्कुल ऊपर था।
ये थे रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला। और अब बात झारखंड की। जमीन के सवाल पर आदिवासियों के झारखंड बंद का आज कई इलाकों में खासा असर रहा। पुलिस की जोरदार मोर्चाबंदी की वजह से हिंसा की खबरें तो नहीं मिली, पर बंद समर्थकों में सरकार के रवैये और पुलिस की सख्ती के खिलाफ गुस्सा साफ था। रांची से हमारे सहयोगी नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
पुलिस की जोरदार घेराबंदी के बाद भी आदिवासी बहुल इलाकों में ये नारे सुबह से ही गूंजने लगे थे। पिछले 25 नवंबर को भी इसी सवाल पर विपक्षी दलों का झारखंड बंद था और उस दिन बड़े पैमाने पर आगजनी तथा तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। लिहाजा इस बार संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस की संगीनें तनी थी। गुरुवार की शाम से ही राजधानी रांची समेत दूसरे कई शहरों के आदिवासी छात्रावासों के सामने पुलिस की तैनाती थी ताकि आदिवासी लड़के लड़कियाँ जत्थों में नहीं निकल सकें। रांची में गिरफ्तार किए जाने के बाद आदिवासी संघर्ष मोर्चा के नेता प्रेम शाही मुंडा ने कहा,
ये जो सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को चिट्ठी दे रही है, नोटिस दे रही है, ये लगता है अंग्रेजी हुकूमत है क्या। हमारी मांगे हैं कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट का संशोधन अध्यादेश रद्द की जाए, क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं सीएनटी एक्ट की धारा जो है 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13 में जो एग्रीकल्चर योग्य जमीन है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिया जा रहा है, उद्योगपतियों को दिया जा रहा है।
गौरतलब है कि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा को लेकर अंग्रेज जमाने में बने संताल परगना और छोटा नागपुर काश्तकारी जैसे दो मजबूत कानून में संशोधन के खिलाफ झारखंड में आंदोलन उग्र है और यह बंद भी उसी का हिस्सा था। ग्रामीण इलाकों में आदिवासी सरकार के इस फैसले को वजूद की लड़ाई मान रहे हैं। पुटी, गुमला, तोरपा, चाईबासा, पाकुड़, मुरहू, लोहरदगा जैसे इलाकों में बंद के दौरान महिलाओं को आगे रखा गया था। सुदूर गांवों से ये महिलाएं अहले भोर ही घरों से निकल पड़ी थी। उन्होंने कई सड़कों को जाम रखा और हुंकार भरी। जमीन के सवाल पर आंदोलन के दौरान हाल के दिनों में तीन जगहों पर पुलिस फायरिंग की घटनाएं भी हुई है जिनमें 7 ग्रामीणों की मौत हुई है। तब सरकार के रवैये पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का आरोप है।
देखिए, अब तो ये सरकार बौखला गई है क्योंकि आप देखिएगा कि तीन माह से लोगों का जो रहा है, चाहे गोला में कोई विस्थापित कुछ बोले तो गोली मार दो, प्रकृति में कोई कुछ बोले तो उसको गोली मार दो, प्रोटेस्ट करने के लिए रांची आए तो उसको गोली मार दो। अब जब में लोग आक्रोश व्यक्त किए अपने जनप्रतिनिधियों का खिलाफ कर रहे क्योंकि उन्होंने अस्तित्व समाप्त करने की बात कही, तो वो अब उस पर आपराधिक मुकदमा दायर कर रहे हैं। सरकार अब पूरी तरह से हतोत्साहित है, अब नकारात्मक कार्रवाई पे उतर आई है कि झारखंड को अब समाप्त कर देना, झारखंडियों की पहचान मिटा देना।
हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर भी आदिवासियों के गुस्से पर है, लेकिन इस फैसले पर वे सरकार की तरफदारी करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ,
एसपीटी एक्ट और एसपीटी एक्ट निश्चित रूप से राज्य के हित में है, आदिवासी मूलवासी और रैयतों के हित में यह सरलीकरण है। इससे राज्य का त्वरित विकास होगा, आदिवासी मूलवासी रैयतों का इसमें डेवलपमेंट होगा।
जाहिर है झारखंड में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तूती बोलती थी। एक तरफ गंभीर रोल करने वाले दिलीप कुमार थे तो दूसरी तरफ आम लोगों से जुड़े रोल करने वाले राज कपूर, मगर रोमांस, स्टाइल और दिल को छूने वाले अभिनेता के तौर पर सिर्फ देवानंद का नाम आता था। देवानंद की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए।
हिंदी सिनेमा में अगर किसी एक शख्स के लिए स्टाइल आइकन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था तो वो थे देवानंद। एक खास अंदाज में बोलना, झुक कर लहराते हुए चलना, तंग पतलून, गले में स्कार्फ, सिर पर बैगी कैप और आपकी आंखों में देखती आंखें, ये थे एवरग्रीन देवानंद, 88 साल के नौजवान। एक बार उन्होंने कहा था, मैं मरते दम तक सिनेमा की वजह से ही जवान रहूंगा। वो इसे साबित भी कर गए। मशहूर फिल्म इतिहासकार देवानंद के करीबी और एक जमाने में बीबीसी के लिए काम करने वाले ललित मोहन जोशी याद करते हैं।
मैंने देखा जब वो लंदन आए पहली बार, उनकी फिल्म गैंगस्टर का प्रीमियर था, तो ही रैंग में, बल्कि जब उन्होंने मुझे रिंग किया और मैं था नहीं घर में, तो आंसर मशीन में उनका रिकॉर्ड हो गया था मैसेज। तो जब लौट के आकर हमने आंसर मशीन में सुना, तो आई कुडंट बिलीव इट कि उन्होंने बिल्कुल अपने उसी अंदाज में कहा, ललित इट इज देव। तो वो बल्कि वो जो हमारी रिकॉर्डिंग थी उसको हमने बहुत साल तक रखे रहे हम। तो मैंने ये देखा कि देव साहब जो थे वो ही वॉज अ विनर, यू नो, अगर आपके वो क्लोज आ जाए तो यू कुड नॉट बिलीव कि एक इंसान जो इतना बड़ा है, जिसको इतनी सफलता मिल चुकी है, वो इतना इंसान कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसे थे, जो भी उनके करीब था वो हर इंसान को ये फीलिंग देते थे कि वो उसके बहुत करीब है।
1923 में गुरदासपुर में जन्मे देवानंद 1943 में अशोक कुमार से प्रभावित होकर अभिनेता बनने मुंबई आए थे। अपने बारे में बात करते हुए एक बार देवानंद ने बीबीसी को बताया था,
मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अंग्रेजी में बीए ऑनर्स किया था और मैं एमए मास्टर्स डिग्री करना चाह रहा, लिटरेचर करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पिताजी उस वक्त उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, बेटा बैंक में नौकरी कर लो, मैं कैसा नहीं होगा। तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट लेके फ्रंटियर रेल में टिकट पकड़ा और लैंड कर दिया बॉम्बे में। और दो साल का स्ट्रगल, 43 to 45 में मुझे टिकट मिला डेक्कन क्वीन की फर्स्ट क्लास पूना में। वहाँ के स्टेशन वैगन स्टेशन स्टेशन पे आई मुझे लेने के लिए, जाके मैंने ऑडिशन दिया, मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला पिक्चर का नाम हम एक हैं। मैं बिल्कुल ही नया था, उस जमाने में कोई अकेडमीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे पास इंटेलिजेंस थी, कॉलेज की पढ़ाई थी, बहुत उम्दा कॉलेज था, बहुत अच्छा बोलता था, प्रेजेंट अच्छा करता था, लोग बड़े खुश होते थे, हंसता था, लोग पागल हो जाते थे। तो जब मुझे ब्रेक मिला तो फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा है।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
फिल्म जगत में देवानंद के सबसे शुरुआती और नजदीकी दोस्त थे गुरुदत्त। उनसे उनकी पहली मुलाकात बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हुई थी। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं,
हमारे कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज मेरे यहाँ और मेरी कमीज उनके यहाँ पहुंचा दी। मजे की बात यह है कि हम दोनों ने वो कमीजें एक ही दिन पहन ली। जब मैं प्रभात स्टूडियो में घुसा तो उनकी नज़र मेरी कमीज़ पर पड़ी। उन्होंने उसे गौर से देखा और पूछा, ये कमीज़ आपने कहाँ से खरीदी? जब मैंने उनकी तरफ नज़र उठाई तो मैंने देखा कि वो मेरी कमीज़ पहने हुए थे। हम दोनों को बात समझ में आ गई और हमने ज़ोर का ठहाका लगाते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। हम जिगरी दोस्त बन गए थे। एक दिन बियर का गिलास लड़ाते हुए उन्होंने वादा किया, देव अगर मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले हीरो हो गए। मैंने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया, अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर आप ही होंगे।
देवानंद को अपना ये वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी।
उनकी पहली फिल्म आप देखिए, विच बिकेम अ बिग सक्सेस, वाज बाजी। अगर आपने बाजी देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा, उसमें आप देखिए कैसे लोग को लाए पहली बार। पहले तो उसमें गुरुदत्त को उन्होंने चांस दिया, गुरुदत्त का पहला डायरेक्शन था और बलराज साहनी ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। साहिर लुधियानवी पहली बार एज अ मेजर फिल्म उसमें वो आए थे। एस डी बर्मन आए, जोरा सहगल आई डांस के लिए और डायरेक्ट गुरुदत्त ने की। तो ही हैड अ विजन, ही कुड इमेजिन हाउ ही कैन मेक अ बिग फिल्म। ऑब्वियसली वो उसके मध्य में तो वो खुद रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो स्टार हैं।
तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर।
देवानंद और सुरैया का इश्क बॉलीवुड की सबसे शानदार प्रेम कहानियों में से एक है।
आई थिंक बी हिट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मैं बिल्कुल नया था, वो बहुत बड़ी स्टार थी। उनके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी, कैडिलैक थी, लिंकन थी, और मैं पैदल जाता था। तो अचानक फुर्सत में आई और मुझे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तो हमारी दोस्ती बन गई। आई थिंक आई वॉज वेरी प्रेजेंटेबल, आई हैड ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एज ए ह्यूमन बींग। आई हैड नो मनी, आई हैव स्टार्व्ड, आई हैव लिव्ड इन चॉल्स, बट आई वॉज हैप्पी, आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज यंग, आई वॉज प्रिपेयर टू स्ट्रगल। तो मैं कुछ चीज़ भागी उनको, हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई।
अपनी आत्मकथा में देवानंद झलक देते हैं कि किस तरह सुरैया से फ्लर्ट करते करते उनकी नजदीकी चाहत में बदल गई।
सुरैया ने मुझसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम में कुछ। सुरैया बोली, बताओ ना। मैंने कहा, तुम्हारी नाक खूबसूरत तो है लेकिन थोड़ी लंबी है। सुरैया ने अपनी नाक छुई और कहा, आप सही कहते हैं। मैंने कहा, मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हारा कोई नाम रखूं। मैं अपने साथ काम करने वाली हर लड़की का नाम रखता हूं। सुरैया ने पूछा, आप मेरा क्या नाम रखना चाहते हैं? मैंने शब्द को लंबा करते हुए जवाब दिया, नोजी। और ये कहते कहते मैंने उसकी नाक का टिप छू लिया। अगले दिन एक आउटडोर शूटिंग के दौरान सुरैया ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? मैंने कहा, किससे? सुरैया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ग्रेगरी पैक से। मैंने कहा, छोड़ो भी, हर कोई ऐसा ही कहता है, मुझे उससे तुलना पसंद नहीं है। सुरैया बोली, लेकिन क्यों नहीं, देखने में वो इतना अच्छा लगता है। मैंने छूटते ही कहा, मैं ग्रेगरी पैक से ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ। सुरैया खिलखिलाई और बोली, मुझे तुम्हारा यही आत्मविश्वास पसंद है।
ये अलग बात है कि सुरैया की नानी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया और देवानंद को सुरैया से अलग हो जाना पड़ा। देवानंद के करियर का पीक था गाइड फिल्म। आरके नारायण के उपन्यास पर बनाई गई इस फिल्म को पूरी दुनिया में क्रिटिकल अक्लेम मिला और उसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से भेजा गया।
गाइड न केवल देवानंद की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, वो विजय आनंद बतौर निर्देशक के सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और मुझे लगता है कि 60 के दशक की वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। गाइड का जो निर्माण था वो भी इस तरह के झंझावातों से गुजरा। गाइड एक बेसिकली एक विचार था जो कि देवानंद के मन में आया और वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो कि अंतरराष्ट्रीय हो। जिस तरह से वो फिल्म बनी, ये तो आपको पता ही होगा कि वो फिल्म मूल का तो एक अंग्रेजी फिल्म थी जो पॉलस बक के पास जाके उन्होंने उसका आइडिया डेवलप किया और टेड डेनिलेस्की ने उसको अंग्रेजी गाइड को उन्होंने डायरेक्ट किया। उसका किस्सा ये था कि ये बात मुझे विजय आनंद साहब ने बताई थी एक बहुत लंबे इंटरव्यू में और वो बहुत उसमें एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी था देव साहब के और विजय आनंद के बीच में। देव साहब ने गाइड में बेतहाशा पैसा खर्चा किया अंग्रेजी गाइड में। देव साहब ने विजय आनंद से कहा कि हम लोग अंग्रेजी का शॉट लेंगे, उसके बाद उसी को आप हिंदी का शॉट लीजिए और वहीदा रहमान जी को लेकर। पहली बात तो वहीदा रहमान जी को लेने के बारे में डिफरेंसेस ओपिनियन थे। जब ये बात तय हो गई, क्योंकि टेड डेनिलेस्की नहीं चाहते थे कि वहीदा रहमान को बोले, लेकिन जब ये फिल्म बनने लगी तो विजय आनंद इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं फिल्म नहीं बना सकता, मैं कोई अनुवादक की तरह किसी फिल्म का निर्माण नहीं कर सकता। तो उन दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, पर विजय आनंद ने कहा अगर मैं गाइड बनाऊंगा तो मैं अपने तरह से उसको बनाऊंगा। तो उन्होंने उसकी कहानी के साथ भी स्वतंत्रता ली और उन्होंने किस तरह से उसको विजुलाइज किया उसके साथ भी उन्होंने पूरी आजादी ली। और गाइड जब बनी तो सभी लोगों ने गाइड देखी है कि वो कितना रिवोल्यूशनरी कहानी है और वहीदा रहमान के लिए वो एक एक, एक आई थिंक वो हमेशा इस बात को कहती हैं कि इससे बढ़िया उनकी कोई फिल्म नहीं है। तो दोनों में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था विजय आनंद में और देवानंद में, वो भी गाइड को लेके अपने चरम पर पहुंचा। और पर बाद में जब गाइड बनी, यहाँ तक कि आर के नारायण उसके फिल्मांकन को लेकर नाराज थे, पर विजय आनंद साहब ने बताया जब वो फिल्म के प्रीमियर के पहले उन्होंने उनको दिखाई पर्सनली तो वो बहुत ही गदगद हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी कहानी को बदला तो है पर ये एक अपने आप में एक कृति है।
दिन डल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन डल जाए।
देवानंद ने भारतीय फिल्म उद्योग को बेमिसाल टैलेंट्स दिए। शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ, टीना मुनीम, ताबू और जीना तमान सबको देवानंद ने ही इंट्रोड्यूस किया।
उनके अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट करने के, प्रयोग करने का जो एक मादा था और लीक से अलग हट के चलने का जो मादा था वो इसके लिए जिम्मेदार था कि वो टीना मुनीम आप कहें या आप जीनत अमान कहें या जैकी श्रॉफ कहें, जितने भी नए कलाकारों को लेकर, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को भी वो लेकर आए, ये उनका एक अपना विजन था जो कि वो किसी प्रोड्यूसर से एक फिल्मकार से अलग हट करके सोचते थे। जैसे आप हरे राम हरे कृष्णा पर वो ड्रग्स पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, उसके लिए देव साहब कभी इंग्लैंड आते थे, कभी नेपाल जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, और उनमें ये क्यूरियोसिटी थी कि वो अपना टाइम बहुत जाया करते थे। ऐसा लगता था घंटों बात करने के दौरान वो बहुत सारी क्यूरियोसिटी उनमें थी। तो जब पहली बार उन्होंने बताया कि जीनत को उन्होंने किसी पार्टी में देखा और वो सिगरेट पी रही थी, और जब देव साहब ने जाकर उसको हेलो कहा तो उसने उनको हेलो बोला और सिगरेट ऑफर की। देव साहब ने कहा कि जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा कि मेरी ये फिल्म है, ये लड़की मेरी फिल्म है। इस तरह से उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा को विजुलाइज किया।
১৯৪৭ के बाद हिंदी फिल्मों पर तीन अभिनेता छाए रहे, बड़े दिल का छोटा आदमी राज कपूर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, पर रोमांस और लोगों के दिलों पर राज करने के लिए सिर्फ एक ही नाम ऊपर आया, देवानंद। दिलचस्प बात यह है कि एक बार इन तीनों को एक साथ मिलने के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने यहां बुलाया। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं,
जब हम उनकी स्टडी में पहुंचे तो नेहरू ने हम तीनों को गले लगाया। वो बीमार चल रहे थे लेकिन थोड़ी ही देर में मूड में आ गए। राज कपूर ने इसका फायदा उठाते हुए सवाल दागा, पंडित जी हमने सुना है कि आप जहां भी जाते थे औरतें आपके पीछे भागा करती थीं। नेहरू ने अपनी मशहूर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं इतना लोकप्रिय नहीं था जितना तुम लोग हो। मैंने भी पूछ ही डाला, आपकी गजब की मुस्कान ने लेडी माउंटबेटन का दिल जीत लिया था, क्या ये सही बात है? नेहरू का चेहरा लाल हो गया लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का आनंद उठाया और हंसते हुए कहा, अपने बारे में कही गई इन कहानियों को सुनकर मुझे मजा आता है। बीच में दिलीप बोले, लेकिन लोग कहते हैं कि लेडी माउंटबेटन ने खुद स्वीकार किया था कि आप उनकी कमजोरी थे। नेहरू ने ठहाका लगाते हुए कहा, लोग चाहते हैं कि मैं इन कहानियों पर यकीन कर लूं।
छोटियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। छोटियों में
रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
और नोटबंदी की चर्चा किए बिना कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। नोटबंदी के बाद क्या आपने किसी बड़े नेता को बैंक या एटीएम की कतार में लगे देखा है? इसका जवाब शायद ना होगा, क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता लाइन में लगा नजर नहीं आया, ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेताओं के पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनके आधार पर एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि इस साल मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों के पास कितनी नगद राशि थी। ये जानने के लिए कि उनके पास कितना नगद धन था, आप आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां ये खबर बहुत 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 पढ़ी जा रही है इस वक्त। और खेल समाचार अगले कार्यक्रम घटनाचक्र में विस्तार से, लेकिन पहले वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। विश्व समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं तृप्ति सक्सेना से।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सूबे की सरकार को बिना बताए पश्चिम बंगाल सचिवालय और कई जिलों में सेना की तैनाती की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बोको हराम के विद्रोह की वजह से उत्तरी नाइजीरिया के 100,000 से ज्यादा लोग भुखमरी से मरने की कगार पर हैं। पाकिस्तान के कोहिस्तान से गायब हुई लड़कियों को दूर दराज के इलाकों में ढूंढने के लिए भेजे गए न्यायाधीश का कहना है कि वो उनके जिंदा होने के सबूत ढूंढने में नाकामयाब रहे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि एलेप्पो से खबरें आ रही हैं कि विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो से भाग कर आने वाले लड़कों और पुरुषों को सरकारी सेना ने हिरासत में ले लिया है। अमरीकी सेनेट ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। प्रतिबंध के तहत जो अमरीकी कंपनी ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। डेढ़ घंटे के बाद घटना चक्र में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।